আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদামু বাইনাল মা'ই ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ, ফা'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়াউমা তাবয়াদ্দু উজুহু ওয়া তাসওয়াদ্দু উজুহ। সাদাকাল্লাহুল আযীম। বারগাহ রিসালাত মে দুরুদ পাক নজরানা পেশি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামিল মালিকুল হাইয়্যুল কাইয়্যুম। আজ আমারি ইস তারবিয়াতি নশিস্ত কা উনওয়ান হে ইনসানি চেহারা। বড়ে গৌর সে সামাত ফরমাইয়ে আর ইসমে বহুত সি নই চিজে বয়ান করেনগে। কুরআনে মজীদ ফরকানে হামিদ মে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাল্লা জালালুহু আম্মা নওয়ালুহু ইরশাদ ফরমা রাহা, ইয়াউমা তাবয়াদ্দু উজুহু ওয়া তাসওয়াদ্দু উজুহ। কিয়ামত কে দিন কুছ চেহরে সিয়াহ হোঙ্গে আর কুছ চেহরে সফেদ হোঙ্গে। اور ایک دوسری آیت میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا چہرہ بنایا اور جتنی مخلوقات اس نے پیدا کی ہر مخلوق کا چہرہ خوبصورت سے خوبصورت اور بدصورت سے بدصورت۔ بہت سی ایسی مخلوقات ہیں کہ آپ چہرہ دیکھیں تو ڈر جائیں، اور بہت سی ایسی ہیں کہ چہرہ دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ خوبصورت چہرہ دیکھ کر انسان خوش ہوتا، اور اگر خوفناک ہیبت ناک ہو تو ڈر جاتا ہے۔ تو ان تمام مخلوقات میں جتنے چہرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، خوبصورت سے خوبصورت بہترین، اور بہت سی ایسی کہ بدصورت سے بدصورت، جس کو دیکھتے ہی انسان عجیب اس کی کیفیت ہو جائے۔ اور ان تمام مخلوقات میں سب سے بہتر چہرہ بنایا انسان کا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر تقویم پر پیدا کیا۔ ساری مخلوقات میں سب سے بہترین چہرہ انسان کا، اور انسانوں میں سب سے بہترین چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، نہ ان سے پہلے کسی کا بنایا نہ ان کے بعد بنایا، جس نے دیکھا وہی قربان ہو گئے۔ ظاہر خالق کائنات کا محبوب، محبوب کا چہرہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو دیکھے وہی فدا ہو جائے، جو دیکھے وہی قربان ہو جائے۔ تو جتنی مخلوقات بنائی ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین چہرہ انسان کا، اور جتنے انسان بنائے اولین تا آخرین، قیامت تک جتنے بھی پیدا ہوں گے اور جتنے ہو چکے، ان سب میں سب سے بہترین چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک قافلہ آیا، اس میں اونٹ تھے بہت سارے، ایک سرخ اونٹ سرکار نے پسند فرما لیا۔ ان سے پوچھا کتنے کا ہے، بتایا اتنے کا، قیمت طے ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اونٹ مجھے دے دو، میں ابھی گھر جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جائیے، اور کوئی جان پہچان نہیں ہے کہ پہلے سے وہ جانتے ہوں، کوئی واقفیت ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، آ کر مدینے میں ٹھہر گیا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، آپ نے اونٹ منتخب فرما لیا، پسند فرما لیا، اونٹ لے کر سرکار چلے گئے۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اونٹ لے کر جو سرخ اونٹ حضور نے پسند فرمایا، تو وہ قافلے والے آپس میں باتیں کرنے لگے، تو یار ایک آدمی آیا نو وارث جس کو ہم جانتے بھی نہیں، اس نے قیمت طے کر لی اور قیمت دی نہیں، اور اونٹ بغیر قیمت دیے لے کر چلا گیا، और ये कहकर के मैं अभी इसकी कीमत भेज देता हूं। तो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि तुम उसे जानते हो। उसने कहा नहीं मैं तो जानता नहीं। तो तुमने कैसे दे दिया? उसने कहा यार उसका चेहरा ही इतना खूबसूरत था कि मैं तो उसको देखते ही रह गया। दूसरे से कहा तुम जानते थे? कहा मैं भी नहीं जानता। तो तुमने कैसे दे दिया? कहा उसकी आंखें इतनी प्यारी थी कि मैं उसी में डूब कर रह गया। तीसरे से पूछा तुम जानते हो? कहा मैं भी नहीं जानता। फिर तुमने कैसे दे दिया? कहा जब वो बोलता था तो ऐसा लगता था मोती झड़ रहे हैं, मैं तो उसकी गुफ्तगू में ही गुम हो गया। अब बड़े परेशान हुए कि हम तो उस आदमी को जानते नहीं, ऊंट भी दे दिया इतना कीमती ऊंट, अगर उसने कीमत नहीं भेजी तो क्या होगा। अब ये गुफ्तगू कर रहे थे कि जो काफले का सरदार था उसकी बीवी खेमे में बैठी ये गुफ्तगू सुन रही थी। उसने वहां से पर्दा हटाया, कहा सुनो वो जरूर कीमत भेजेगा, जब उसने कहा है तो जरूर भेजेगा। उन्होंने पूछा तुम जानती हो? कहा जानती तो मैं भी नहीं। फिर कैसे कह रही हो? अरे वो चेहरा ही ऐसा था जो झूठे का नहीं हो सकता। जब तुम लोग गुफ्तगू कर रहे थे मैंने पर्दा हटाकर उस नौवारिद को, उस मुसाफिर को मैंने देखा था, उसके चेहरे से तो शुआएं निकल रही थी, इतना खूबसूरत चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। वो झूठे का नहीं हो सकता, सच्चे का चेहरा। मुझे यकीन है कि वो कीमत जरूर भेजेगा, और नहीं भेजेगा तो मैं दूंगी तुम्हें। अभी ये गुफ्तगू कर रहे थे कि साहबा आ गए, कहा ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की कीमत भेजी। उन्होंने कहा हमें भी उसी आका के पास ले चलो। सबके सब मिलकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, चेहरे मुबारक को देखा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो। तो पूरी मखलूकात में बेहतर चेहरा इंसान का, और इंसानों में सबसे बेहतर, सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत चेहरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व ताला ने चेहरे को बड़ी अजीब चीज बनाया। चेहरा हिद्दते नार भी है और चेहरा मतलए अनवार भी, चेहरा सवाब भी है और चेहरा अजाब भी। चेहरा इंसान के नामे अमाल में नेकियों का इजाफा भी करता है, और यही चेहरा नामे अमाल में गुनाहों का इजाफा भी करता है। और याद रखो सारे चेहरे एक तरह नहीं होते, सारे चेहरे एक तरह नहीं होते। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें देखना ही गुनाह है, नजर डालो गुनाह है, और कुछ चेहरे ऐसे हैं कि सिर्फ उनकी जियारत कर लो सवाब ही सवाब, सवाब ही सवाब है, उनको देखना ही सवाब। कौन? वालदैन का चेहरा। हदीस शरीफ के मुताबिक मोहब्बत के साथ वालदैन के चेहरे को देखो एक हज का सवाब ले। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार देखें। कहा बार बार सवाब मिले, घर बैठे हज उमरे का सवाब ले लो। ये है वालदैन का चेहरा, मोहब्बत की निगाह से देखो हज का सवाब ले लो। अरे जिनके चेहरे को देखकर हज का सवाब मिल रहा है उनकी खिदमत करके कितना सवाब मिलेगा, उनकी इताअत करके कितना सवाब मिलेगा, उनके नक्शे कदम पर चलकर कितना सवाब मिलेगा। खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिनके वालदैन जिंदा हैं या वालदैन में से कोई एक जिंदा है। रोजाना मोहब्बत के साथ देखो, रोजाना हज का सवाब ले लो। तो चेहरे को देखना ही सवाब। वलीउल्लाह का चेहरा देखना सआदत है, नबी का चेहरा देखना सहाबियत है। वली के चेहरे को देखो सआदत है, नेकबख्ती है, खुशबख्ती है। अल्लाह के वली के चेहरे को देखा, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ चेहरों की निशानदेही भी फरमा दी। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से फरमाया हल उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि तुम में बेहतरीन लोग कौन हैं? नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हां सरकार जरूर बताइए हम में बेहतरीन लोग कौन हैं। फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खियारुकुम अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़िक्रल्लाह, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं कि उनके चेहरों को देखो तो अल्लाह याद आ जाए। कौन है वो? अल्लाह के नेक बरगुजीदा बंदे। वलीउल्लाह का चेहरा अल्लाह की याद दिलाता, चेहरा देखकर ही पता चल जाता है अल्लाह का वली आ रहा, और चेहरे का दिल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, चेहरे का दिल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक, जो कुछ दिल में होता है वही चेहरे पर आ जाता, यह हकीकत है। आदमी कितना ही छुपाए लेकिन चेहरे से जाहिर हो जाता, चेहरा बता देता है। क्यों? इसलिए चेहरा हिद्दत नार भी है, मतलब अनवार भी, चेहरा शैतान सिफत भी है और फरिश्ता सूरत भी, चेहरा सवाब भी है और अजाब भी, चेहरा सजा भी है और जजा भी, चेहरा ही सब कुछ है। इंसान कितना छुपाए चेहरे से जाहिर हो जाता, कैसे? क्या यह हो सकता है कि दिल में डर हो और चेहरे से खौफ के आसार ना हो? दिल में डर हो और चेहरे पर खौफ के आसार जाहिर ना हो, क्या यह हो सकता है कि दिल में शर्मिंदगी हो और चेहरे पर नदामत के आसार ना हो? क्या यह हो सकता है कि दिल में गम हो और चेहरे पर हुज्न व मलाल के आसार ना हो? क्या यह हो सकता है कि दिल में खुशी हो और चेहरे पर इनबिसात की लहरें ना हो? जब यह नहीं हो सकता तो यह कैसे हो सकता है कि दिल में इश्क़े रसूल हो और चेहरे पर नूरानियत ना हो? दिल में इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और चेहरे पर नूरानियत ना हो, लाजिम है दोनों चीजें। इधर नूर पैदा हुआ उधर चेहरा रोशन हो, जबान पर दुरूद और सलाम के नगमे जारी हो गए, तो दिल और चेहरे का बड़ा गहरा ताल्लुक। फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा दिल का आईना है। चेहरा पढ़ो, किताबें पढ़ते हैं ना, चेहरा पढ़ो। एक इल्म है कयाफा शिनासी, चेहरों को पढ़ना। और अल्लाह के वली, वैसे तो बहुत सारे इल्म है, पामिस्ट्री है, हाथों की लकीरें देखना, लकीरें देखते ना बैठे हुए बता रहे हैं, किस्मत का हाल बता रहे हैं, आपके साथ ये होगा आपके साथ ये होगा। बहुत से लोग फुटपाथ पर बैठकर बता रहे होते हैं, अब लोग आके पूछते हैं जी वो फला ने ये बताया कि आपके साथ एक हादसा होने वाला है, किसी ने बताया कि वो सदर में बैठा था फुटपाथ पर, किसी ने बताया आपकी तरक्की होने वाली है, कहां था वो सदर में फुटपाथ पे बैठा था और फला चौरंगी पर। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो अपना हाल नहीं देख लेता पहले, मैं यहां क्यों बैठा हूं? दूसरों की किस्मत का हाल बताने वाला खुद फुटपाथ पर बैठा है, अपना हाल पहले देख लेता कि मेरे साथ क्या होने वाला है तो वहां ना बैठा होता। लेकिन बहरहाल यह भी एक इल्म है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, यह भी एक इल्म है, कयाफा शिनासी भी एक इल्म है, बहुत सारे उलूम है, लेकिन रूहानियत सब पर हावी है। रूहानियत सब पर हावी है, जिसके अंदर रूहानियत है उसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ है। तो कयाफा शिनासी, चेहरे के नकूश को पढ़ना, यह आदमी कैसा होगा, किताबें मौजूद है आप देख ले, लोगों ने बहुत कुछ लिखे, किसी के कान ऐसे हैं तो यह बहुत शातिर होगा, किसी की नाक ऐसी है तो यह तोता चश्म होगा, इसकी नाक तोते की तरह है, मुख्तलिफ चीजें हैं ना, बहुत सारी चीजें। तो अबू जहल एक कयाफा शिनास को ले आया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, तमस्खुर करने के लिए, और लेकर आके कहता है वो जो सामने बैठा है ना आदमी, बताओ वो कैसा, इसके मुतालिक बताओ। और हंस के कहता है कि देखो इसने नबुवत का दावा किया, बड़े जोर से हंसकर, ताकि ये कुछ कहे तो फिर मैं तमस्खुर उड़ाऊं, लोगों से कहूं कि देखो इसने तो सरकार के चेहरे को देखकर ये कहा, उसको बेवकूफ को पता ही नहीं था वो चेहरा ही ऐसा था जिसने देखा कुर्बान हो गया। अल्लाह ने ना उससे पहले बनाया ना उसके बाद कोई ऐसा चेहरा बना, वो अपनी जात में अपनी सिफात में जिस तरह वो बेमिसाल है, उसका रसूल भी बेमिसाल। तो वो जिसको लेकर आया उसने गौर से देखा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के झुरमुट में दूर तशरीफ फरमा, रौनक अफरोज। अब ये दूर से दिखा रहा वो जो आदमी बैठा है, उसने कहा कौन? कहना वो दो के दरमियान जो तीसरा। उसने बड़े गौर से सरकारी दो आलम अलैहि सलातो व सलाम के चेहरे अनवर को देखा और पूछा ये क्या कहता है? कहा ये कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं। उसने कहा सही कहता, सही कहता होगा, हैरान हुआ, कैसे? कहा इसलिए कि जो चेहरा मैं देख रहा हूं ये झूठे का नहीं हो सकता, सच्चे का चेहरा, चेहरा ही बता रहा है ये झूठा नहीं है, ये सच्चा आदमी। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया, मैं तो कुछ और सोचकर आया था, इसने तो और तारीफ कर दी। तो कहने का मतलब ये है, चेहरा दिल का आईना होता है, चेहरा इंसान के आमालो अफालो किरदार का आईना होता, जैसे अमल है वैसा चेहरा, आमाल अच्छे हैं तो चेहरा भी अच्छा, और आमाल बुरे हैं तो चेहरा भी बुरा। लेकिन आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं, अंग्रेज तो बड़े खूबसूरत हो, एक सवाल है ना, अंग्रेज तो बड़े खूबसूरत हैं, मुसलमान भी इतने खूबसूरत हैं जितने वो, और जितने खूबसूरत हैं उतने इनके आमाल बदसूरत, हकीकत है ना, जितने खूबसूरत आमाल उतने ही बदसूरत, जितना चेहरा सफेद आमाल उतने ही ज्यादा सिया। ये क्या बात हुई मेरे बुजुर्गों और दोस्तों? हकीकत ये है, अल्लाह का वली जब देखता है तो उसको असली चेहरा नजर आ जाता। हम तो जाहिर को देखते हैं, वो बातिन को देखता, हम जाहिरी चेहरे को देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह का वली जब देखता है तो उसके असल आमाल जो हैं वो चेहरे से जाहिर हो जाते। और इंसान का चेहरा कैसा भी हो, अगर नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तो चेहरे पर इबादत का नूर जरूर होगा, चेहरे पर शराफत का नूर जरूर होगा, चेहरे पर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चमक जरूर। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला, सिया चेहरा था लेकिन मकबूल इतने थे कि सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, या सैयदना बिलाल, या सैयदना बिलाल। लोगों ने कहा ये तो गुलाम है, आप तो अमीरुल मोमिनीन है। फरमाया नहीं, ये मेरे आका का गुलाम है, मेरे सर का ताज है। सैयदना बिलाल, ऐ मेरे सरदार बिलाल, कहकर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने पुकार रहे। तो आमाल का असर चेहरे पर पड़ता, और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, उनके चेहरों में सजदों के निशान। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, और इसकी मिसाल तौरात में भी है और इंजील में भी, चेहरों पर सजदों के निशान। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक और हदीस शरीफ, सरकार ने फरमाया, कयामत के दिन मैं अपने उम्मतियों को पहचान लूंगा। साहबा ने सवाल किया, सरकार कैसे पहचानेंगे? उम्मती कोई 100-150 तो नहीं है, 1,500 तो नहीं है, 1,50,000 तो नहीं है, 1,50,000,000 तो नहीं है, बेशुमार है। और उस वक्त से लेकर आज तक, और आज से लेकर कयामत तक कितने हो जाएंगे, कोई शुमार कर सकता? कयामत में सरकार फरमाते मैं पहचान लूंगा, कैसे? उनके आजाए वजू चमकेंगे, उनकी पेशानियां चमकेंगी, उनके चेहरे चमकेंगे। यानी आज जो हम लोग वजू कर रहे हैं ये मामूली बात नहीं है, आपने हाथ धो लिए, अपना चेहरा धो लिया, अपने पैर धो लिए, यही आजाए वजू चमकेंगे और सरकार देखेंगे चेहरा चमक रहा है, ये तो मेरा, ये मेरा है। अपने उम्मतियों को आजाए वजू के चमकने से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहचान लेंगे, तो कयामत में भी चेहरे चमकेंगे। और कुरान करीम में एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, जो मुजरिम हैं उनके चेहरे सिया होंगे, जिन्होंने जुर्म किया, मुजरिमीन जो हैं उनके चेहरे सिया होंगे, और जो नेक बंदे हैं उनके चेहरे सफेद होंगे। गोया इनके आमाल की सियाही कयामत के दिन उनके चेहरों पर, और इनके नेक आमाल की सफेदी और चमक उनके चेहरों से जाहिर। अब अगर ये चाहते हो कि कयामत में चेहरे चमकने लगे, तो इस दुनिया में नेक आमाल करते रहो, इस दुनिया में नेक अमल करो, इंशाल्लाह कयामत में चेहरा भी चमकेगा और देखने वाले देखेंगे रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये चेहरा जो है ये बड़ी अजीब चीज है, यही चेहरा नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करता है और यही चेहरा नामे अमाल में गुनाहों का इजाफा करता है। कुछ चेहरों को देखने से सवाब मिलता है। सरकार ने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम के सामने बैठकर उनको देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं। हजरत अली फरमाते हैं अबू बकर क्या कर रहे हो? कहा मैं तो इबादत कर रहा हूं, मैं इबादत कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है, मैं देख रहा हूं, मैं तो इबादत कर रहा हूं। गौर करो, जिनके चेहरे को देखना इबादत है उनका अपना क्या मकाम है, उनकी अपनी इबादत का क्या मकाम होगा? अगर कोई देख ले तो वो इबादत में शामिल हो जाए, तो जिसके चेहरे को देखना इबादत है उसकी इबादत, उसकी रियादत, उसका मकाम कितना बुलंद होगा। जैसे जैसे मकाम मर्तबा बढ़ता गया वैसे ही देखने वाले का मकाम भी बढ़ता गया। यह भी फैक्ट और हकीकत है। एक आम इंसान को देख लो कोई सवाब नहीं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, सवाब मिल रहा है? हां आप तो खैर वली हैं सारे, मैं आपको देखूंगा तो मुझे सवाब मिले। अब वलीउल्लाह के चेहरे को देखना सआदत है, नेकी। वालदैन के चेहरे को देखा, हज का सवाब मिल गया। और आगे बढ़े, नबी के चेहरे को देखा और सवाब मिल गया। सैयदुल अंबिया के चेहरे को देखा, सहाबियत का शर्फ मिला। सहाबा को जो मकाम मिला चेहरा मुस्तफा को देखने की वजह से मिला। और मकाम क्या है? उम्मत के औलिया, अक्ताब, अगवास कितने ही बुलंद मकाम पर पहुंच जाएं, सहाबियत के दर्जे को नहीं पा सकते। इंसान इबादत करके, रियाजत करके, मुजाहिदा करके वली बन सकता है, कुतुब बन सकता है, विलायत के किसी मकाम पर पहुंच सकता है, सहाबी नहीं बन सकता, सहाबी नहीं बन सकता। अब आप कहेंगे उनको क्यों मकाम मिला? अच्छा, इस वजह से कि शायद सहाबा ने जिहाद किया, इस वजह से ये मकाम मिला। तो हम कहेंगे जिहाद तो उम्मत के मुजाहिदीन भी करते, कितने बड़े बड़े जनरल मुजाहिदीन के नाम मौजूद हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सारी उम्र जिहाद में गुजरी, मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में कहां से कहां पहुंच गया, सुल्तान महमूद गजनवी, एक से एक बढ़कर सरकार की उम्मत के मुजाहिद मौजूद, लेकिन इनको मकाम नहीं मिला जो सहाबा। फिर कहा नहीं, सहाबा को इबादत की वजह से मिला, कसरत नवाफिल की वजह से, रात को जागते थे सहाबा इस वजह से। हमने कहा रात को जागने की वजह से, तो गौसे आजम भी रात को जागते थे, इमाम आजम भी रात को जागते थे। इमाम आजम एक रकात में एक कलाम पाक मुकम्मल करते, जब नियत बांध ली कलाम पाक शुरू कर दिया, कुरान मजीद फरकान हमीद, नियत बांध कर नफिल में एक रात में 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज। गौसे आजम और इमाम आजम दोनों 40 साल, एक दो साल नहीं है, ईशा के वजू से फजर की नमाज का मतलब यह है, अगर आदमी सो जाए तो वजू टूट जाए ना, ईशा का वजू करके सो जाए तो टूट जाए, फजर के लिए फिर करना पड़ेगा। ईशा के वजू से फजर की नमाज का मतलब यह है कि ईशा की नमाज पढ़कर सारी रात जिक्र, अजकार, नवाफिल, तिलावत कुरान, यहां तक के फजर की अजान हो गई और उसी वजू से फजर की नमाज, मामूली बात नहीं। तो फिर कसरत नवाफिल की वजह से भी नहीं, जिहाद की वजह से भी नहीं, कहां सदकात और खैरात की वजह से सहाबा को मकाम मिला? नहीं, उम्मत में कितने ऐसे गुजरे जो सदकात और खैरात में मशहूर, जो आया उसी को दे दिया, किसी को वापस नहीं लौटाया। फिर अकल इंसानी हैरान है, ना जिहाद की वजह से, ना इबादत की वजह से, ना मुजाहिदे की वजह से, ना रियाजत की वजह से, ना सदकात और खैरात की वजह से, ना सखावत की वजह से, फिर किस वजह से सहाबा को मकाम मिला? हकीकत यह है कि सिर्फ ईमान की हालत में चेहरे मुस्तफा को देखा और ईमान पर खात्मा हुआ, सहाबा को यह मकाम मिल गया। चेहरे मुस्तफा को देखने की वजह से यह मकाम मिला, ईमान की हालत में सरकार की जियारत की। तो गौर करो, जिस चेहरे को देखने की वजह से आदमी उम्मत के औलिया अक्ताब से बुलंद हो जाए, उस चेहरे का अपना मकाम कितना बुलंद। सिर्फ ज्यारत करने की वजह से, आमाल नहीं। और अगर आप कहेंगे आमाल, तो फिर मैं एक वाकया सुना दूं ताकि आपका ईमान और ताजा हो जाए। एक जंग के मौके पर एक शख्स हाजिर होता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान होना चाहता हूं। सरकार ने बैत किया, कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया, तलवार लेकर जिहाद में, हालत जंग में मुसलमान हुआ था, तलवार लेकर चले, लड़ा बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ, बेजिगरी के साथ लड़ा, और लड़ता हुआ शहीद हो गया। इस्लाम कबूल किया उसी जंग में, और उसी जंग में लड़ा और शहीद हो गया। अब उसका मकाम क्या है? गौसे आजम से बुलंद है या नहीं? सहाबी है ना, ईमान की हालत में जियारत की ईमान पर खात्मा हो गया, सबसे बुलंद, गौसे आजम से बुलंद, गरीब नवाज से बुलंद, मखदूम समदानी से बुलंद, जितने बुजुर्गान दीन है सबसे बुलंद, सहाबियत का दर्जा मिल गया। क्यों? नमाज तो उसने पढ़ी नहीं, एक नमाज भी नहीं पढ़ी। क्यों? नमाज का टाइम ही नहीं मिला, नमाज का टाइम ही नहीं। इधर इस्लाम कबूल किया, उधर जंग में गया, शहीद हो। हज, हज तो खैर नामुमकिन है, वो तो साल के बाद मौका आता। जब नमाजी का टाइम नहीं मिला तो हज का टाइम, रोजा, रोजे का भी टाइम नहीं। अरे इधर इस्लाम कबूल किया, उधर जाकर शहीद हो गया। नमाज, रोजा, हज, जकात, सदकात, खैरात, कुछ नहीं। नामे आमाल में एक नमाज नहीं, नामे आमाल में एक हज नहीं, नामे आमाल में एक उमरा नहीं, नामे आमाल में कोई जकात और सदकात और खैरात नहीं, लेकिन दर्जा गौसे आजम से बुलंद, दर्जा उम्मत में सबसे बुलंद। क्यों? इसलिए बुलंद, सहाबियत के मकाम को पहुंच गया। तो कैसे पहुंचा? चेहरे मुस्तफा को देखने की वजह से पहुंचा। ईमान की हालत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और ईमान पर खात्मा हुआ, सहाबियत के मकाम को पहुंच गया। और सहाबी उम्मत के औलिया, अख्ताब, अगवास, सबसे बुलंद। गौसे आजम से पूछा, ऐसे आदमी के मुतालिक आप क्या फरमाते हैं? ऐसे आदमी के मुतालिक आप क्या फरमाते हैं जिसने एक नमाज नहीं पढ़ी, जिसने एक रोजा नहीं रखा, जिसने हज नहीं किया, जिसने अरकान इस्लाम में किसी पर अमल नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला। इस्लाम कबूल किया जंग में, हालत जंग में इस्लाम कबूल किया और जंग के लिए गया, लड़ा, शहीद हो गया। उसका मकाम क्या है? उम्मत के औलिया अख्ताब से बुलंद है। गौसे आजम ने फरमाया, मेरी गौसियत उसके कदमों पे कुर्बान, मेरी गौसियत उसके कदमों पे कुर्बान जो मेरे आका के कदमों पे कुर्बान। तुम उसके मकाम के मुतालिक पूछ रहे हो, सहाबी है और सबसे बुलंद है उम्मत में, सहाबी का दर्जा सबसे बुलंद। इबादत करके वली बन सकता है, कुतुब बन सकता है, विलायत के किसी मकाम पर पहुंच सकता है, सहाबी नहीं बन सकता, सहाबी नहीं बन सकता। तो कहने का मकसद यह है, चेहरे को देखा और सहाबियत का मकाम मिल गया, और फिर ईमान पर खात्मा इसकी शर्त भी लगाई। अगर सिर्फ ये कहते जिसने चेहरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो सहाबी तो देखने वाले तो बहुत, अबू जहल, अबू लहब, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, काफिरीन, सब सबने देखा, लेकिन हालत कुफर में देखा। सिद्दीक अकबर ने देखा, हालत ईमान में देखा। फारूक आजम ने, उस्मान गनी ने, अली खैबर शिकर ने, जितने सहाबा, हालत ईमान में देखा और हालत ईमान में ही दुनिया से तशरीफ ले गए। तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको देखना ही सवाब, सिर्फ उनको देखते जाओ, नामा अमाल में नेकियां शामिल हो। चेहरा बड़े अजीब चीज है। जब बच्चा दुनिया में आता है, उसकी तस्कीन का बाइस मां का चेहरा। एक नए देश में आया ना, रो रहा है, घबरा रहा है, देख रहा है, मां का चेहरा उसकी तस्कीन का बाइस। अगर मां का चेहरा ना हो तो इतने लोगों में होने के बावजूद अपने आप को तन्हा महसूस करे। जैसे ही मां के चेहरे को देखता है, सुकून हो जाता, रोना बंद हो जाता, खुश हो जाता। एक के लिए दूसरे के चेहरा अल्लाह ने सुकून का बाइस बनाया, बच्चे के लिए मां का चेहरा। मुरीद के लिए पीरो मुर्शिद का चेहरा, शागिर्द के लिए उस्ताद का चेहरा, उम्मती के लिए नबी का चेहरा। अब वो तो सबसे बढ़कर है, और वो चेहरा ऐसा है कि जाहिर में देखे या ख्वाब में देखे, आलम बेदारी में देखे, जैसे भी देखे, उसके ईमान की बुलंदी का सबब, उसके ईमान की बुलंदी का सबब है नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा। तो कुछ चेहरे ऐसे हैं कि जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं सुभान अल्लाह, बेख्तियार मुंह से निकलता है ना। कुछ चेहरे ऐसे देखें तो कहें माशाल्लाह, और कुछ ऐसे के देखें तो कहें इन्ना लिल्लाह या अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसे भी चेहरे हैं ना, देखकर ही मूड खराब हो जाता, अरे ये कहां से आके। क्यों? किसी के चेहरे पर आमाल की नूरानियत है तो किसी के चेहरे पर आमाल की नहुसत है, देखकर ही आदमी का मिजाज खराब हो जाए, और किसी के चेहरे को देखो तो देखकर ही दिल खुश हो जाए कि ये चेहरा देखते ही रह जाओ। तो जैसा चेहरा वैसा ही देखने वाले का मकाम। वालदैन के चेहरे को देखा, एक हज का सवाब मिल गया। वलीयुल्लाह के चेहरे को देखा, सआदत मिल गई। और नबीयुल्लाह के चेहरे को देखा, सहाबियत का शर्फ मिल गया। तो सबसे बड़ा शर्फ है। तो चेहरा दिल का आईना है, दिल में कुछ भी हो चेहरे से जाहिर हो जाएगा। इंसान कितना छुपाए, चेहरे से जाहिर हो जाता है। बाज लोग छुपाते हैं, जाहिर नहीं करते, दिल में कुछ, जबान पर कुछ, लेकिन चेहरा एक ऐसी खुली किताब है कि उसको अगर पढ़ो तो दिल का हाल खुद ब खुद जाहिर हो जाए, दिल का हाल खुद ब खुद जाहिर हो जाए। इसीलिए अगर ये चाहते हो कि तुम्हारा चेहरा पुरनूर हो जाए, तुम्हारा चेहरा रोशन हो जाए, तुम्हारा चेहरा चमकदार हो जाए, तो सबसे पहली बात सच बोलना शुरू कर दो। सच्चाई का भी नूर होता। इबादत शुरू कर दो, इबादत का भी नूर होता। रियाजत शुरू कर दो, उसका भी नूर होता है। इश्क रसूल दिल में पैदा कर लो, उसका भी नूर होता। जो कुछ दिल में है चेहरे से जाहिर हो जाएगा, और फिर देखने वाला समझ जाएगा कि आशिक रसूल आ रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में जितनी भी अशिया पैदा की और जितनी भी चीजें, जितनी मखलूकात, उन तमाम मखलूकात का चेहरा बनाया। और आप देख लें अल्लाह तबारक व तआला की कैसी कैसी मखलूकात, समंदर में मखलूकात हैं, जमीन पर मखलूकात हैं, फिजाओं में मखलूकात हैं, आसमान पर मखलूकात, हर एक का चेहरा है। और उन तमाम मखलूकात में बेहतरीन चेहरा इंसान का, और सारे इंसानों में बेहतरीन चेहरा उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न उनसे पहले बनाया न उनके बाद बनाया। इसलिए चेहरों को पढ़ो, चेहरों को पढ़ो, जिस तरह किताब पढ़ते हैं ना चेहरे भी पढ़े जाते हैं। और अगर आदमी इबादत और रियाजत करता है, उसके अंदर रूहानियत हो, तो वो न सिर्फ चेहरे को पढ़ता है बल्कि दिल को भी पढ़ लेता है। इसके दिल में क्या है, इसकी जबान पर क्या है, और इसके चेहरे पर क्या है। तो आमान व अफाल चेहरे से जाहिर हो जाते, गलत काम करके आए हैं चेहरे से जाहिर। बल्कि गुज़िश्ता उम्मतों में तो लिखा जाता था, अगर कोई रात को कोई गलत काम करके आए तो पेशानी पर लिखा होता है। सुबह किसी ने चोरी की तो पेशानी पर लिखा चोर। अब जहां से गुजर रहे लोग देख रहे हैं चोर आ रहा, इसने चोरी की। किसी ने शराब पी है तो लिखा शराबी। किसी ने जिना किया तो जानी। जो भी काम किया पेशानी पर लिखा है। ये तो सदका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप कुछ भी काम करें चेहरे पर लिखा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दा पोशी फरमाई, लेकिन मैं ये कहता हूं अब भी लिखा होता, अब भी लिखा होता है, पढ़ने वाले अब भी पढ़ लेते। पढ़ने वाली निगाह चाहिए। हजरते شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الف ثانی، ان کے صاحبزادوں کو استاد محترم پڑھانے آتے تھے. آپ نے ایک نظر ان کو دیکھا تو اپنے صاحبزادوں سے فرمایا، تمہارے استاد کی پیشانی پر میں نے شقی لکھا ہوا دیکھا، شقی بدبخت. صاحبزادے پریشان ہوئے، کہا ابا حضور آپ دعا فرمائیں، ہمارے استاد ہیں، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اور پیشانی پر شقی لکھا ہے بدبخت، آپ دعا فرمائیں شقاوت سعادت سے بدل جائے. فرمایا ٹھیک ہے دعا کریں. آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا سے اس شقاوت کو سعادت میں بدل دی. پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان کو دیکھا تو اپنے صاحبزادوں سے فرمایا، ہاں اب ہم نے تمہارے استاد کی پیشانی پر سعید لکھا ہوا دیکھا. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کی دعاؤں سے شقاوت سعادت میں بدل جاتی، عداوت محبت میں بدل جاتی ہیں، اور انسان کے اندر جو سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، وہ عبادت اور ریاضت میں بدل جاتی. اسی لیے جو ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں ہوتا، سعید ہو جاتا. شقی آتا ہے سعید بن کر جاتا ہے، بدبخت آتا ہے نیکبخت ہو کر جاتا. کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے تو پوری محفل پر یکساں ہوتی ہے. پھر وہ بارش یہ نہیں دیکھتی کہ اس محفل میں کون بدبخت ہے، کون نیکبخت ہے، کون گناہکار ہے، کون سیاہکار ہے، کون نیکوکار ہے. جب برسات ہوتی ہے سب پر یکساں ہوتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بدبخت آتا ہے تو نیکبخت بن کر جاتا ہے، شقی آتا ہے تو سعید بن کر جاتا. اسی لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، ان کے چہروں کو دیکھو گے تو سعادت ملے گی، ان کے محفل میں بیٹھو گے تو شقاوت دور ہو جائے گی. اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنے چہروں کو صحیح کرنا چاہیں تو ان چہروں کے پاس چلے جاؤ جو پہلے سے ہی صحیح ہیں، جنہوں نے اپنے چہرے پہلے ہی صحیح کر لیے، جن کے چہروں پر عبادت کا نور ہے، صداقت کا نور ہے، ریاضت کا نور ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اگر آپ سچ بولنا شروع کر دیں آپ کے چہرے پر سچائی کا نور آ جائے. اگر آپ عشق رسول اپنے دل میں پیدا کریں اور ہر وقت اپنی زبان پر درود پاک جاری رکھیں آپ کے چہرے پر اس کا نور آ جائے. اگر آپ اپنے دل سے اپنے بھائیوں کے لیے عداوت کو دور کر دیں، خلوص اور محبت پیدا کر لیں، ایثار پیدا کر لیں، آپ کے چہرے پر اس کا نور آ جائے. تو اس لیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے چہرے دکھائے ہیں کہ ان چہروں کو دیکھنے کی وجہ سے ہی ہماری بخشش ہو جائے. ایسے نورانی چہرے ہم نے دیکھے اور وہی چہرے قیامت میں جب ہمیں نظر آئیں گے تو ادھر بھی کامیاب ادھر بھی کامیاب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات اپنی جگہ تشریف رکھیں. रजब के शुरू में हमने वो फार्म तकसीम किए थे हाजिरी के लिए, और उसमें वो लिखा था कि जो जो भी हाजिर हो जिन जिन महाफिल में, तो वो उसमें लिखता जाए कि इसमें हाजिरी हुई और इसमें नहीं हुई। तो यकीनन आप तमाम हजरात ने उस पर अमल किया होगा। अब ये महीना अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो जिन जिन हजरात के पास वो फार्म हैं, वो इस महीने की आखिरी तारीख को यहाँ पर बिलाल अशरफी साहब के पास जमा करा दें, और ताकि फिर हम उसको चेक करें और उसके बाद जो भी होगा उसमें देखा जाए। उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, ऐसा नहीं कि किसी को कोई सज़ा मिलेगी या कोई जुर्माना होगा, कोई सज़ा जुर्माना नहीं होगा, लेकिन बस उसमें ये एक देखा जाएगा कि किसकी हाजिरी कितनी हुई। तो आप बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, इस महीने की आखिरी तारीख को फार्म जमा करा दें, और फिर हम आइंदा जनरल मीटिंग का ऐलान बहुत जल्द कर देंगे, हो सकता है कि अगले इतवार को ही हो जाए। तो इसलिए इस महीने की आखिरी तारीख को तमाम हजरात वो फार्म जो है, हाजिरी का फार्म जमा करा दें।